Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atma un deha se bhinna hai. Ye nischay kar lena chahiye. यथा जगत प्रवृत्तीनां आदिकारणमं सुमान पुमांस्तथैव देहादि प्रवृत्तो कारणं परम। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जैसे संसार में सभी प्राणियों की प्रवृत्ति का मूल कारण है सूर्य, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में व्याप्त होता है तो सभी प्राणी अपने प्रवृत्ति कर लेते हैं। इसी तरह उसी परमात्मा के शरीर में अनुप्रवेश के पश्चात ही शरीर चेष्टा करता है। सूर्य के प्रकाश में प्राणी अपने अपने कर्म करते हैं, चेष्टा करते हैं। इसी तरह परमात्मा सदाशिव के अनुप्रवेश से ही यह देह चेष्टा करता है। सूर्य के रश्मि से प्राणी सब कुछ करते हुए, अभी चाहे वह इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, शास्त्र विहित हो शास्त्र प्रतिषिद्ध हो, चाहे नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे काम्य कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो, चाहे प्रायश्चित कर्म हो, यावत प्रवृत्ति में सूर्य का हेतु है, सूर्य कारण है, प्रकाश कारण है। लेकिन सूर्य के प्रकाश के चलते प्राणी में जैसा भी प्रवृत्ति, उन प्रवृत्तियों से सूर्य को कुछ लेना देना नहीं है, सूर्य असंग है। इसी तरह सदाशिव के परमात्मा के प्रवेश से ही ये शरीर में चेष्टा है, और शरीर चेष्टावान होने के बाद चाहे वह शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, चाहे नित्य करे चाहे नैमित्तिक करे, चाहे काम्य करे चाहे प्रायश्चित करे चाहे निषिद्ध करे, कुछ भी कर्म करे, उस कर्म का प्रेरक उस परमात्मा को इन कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं है तो फिर ये जीवात्मा क्यों कर्म बंधन में पड़ता है महाराज? तो बोले जीवात्मा के कर्म बंधन में पड़ने का कारण उसकी अपनी मूर्खता है, ना समझपना है। वो अन्य की चेष्टा को अन्य के रूप में, परक चेष्टा को परमात्मा के उपस्थिति में होने वाले यावत देह और करण आदि की चेष्टा को वह भ्रांति से मानता है कि ये चेष्टा मैं ही करने वाला हूं। चिच्छायापेत, चैतन्य की छाया से युक्त होकर अंतकरण और अंतकरण के तादात्म सन्निधि से, जैसे अग्नि सन्निधि से लोहा जलाने वाला हो जाता है, इसी प्रकार से चिच्छाया सन्निधि से शरीर कर्म करने वाला, चेष्टा करने वाला, इंद्रियां कर्म करने वाले, चेष्टा करने वाले, मन बुद्धि आदि कर्मकर्ता के रूप में उपस्थित होते हैं, वह सन्निधि मात्र से। और भ्रांति ये होती है कि उचित छाया को भ्रांति ये होती है कि मैं ही सब कुछ करता हूं और यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है। ये ठीक है, अंतकरण सन्निधि से चित छाया ही कर्म करता है, लेकिन वह चित छाया ये कहता कि यही मेरा पारमार्थिक असली स्वरूप है, ये उसकी भ्रांति है। और जो कर्म बंधन की प्राप्ति होती है, वेदांत की सारी प्रक्रिया है उसी चिच्छाया को होती है। बात समझ गए? चिच्छाया माने चैतन्य का प्रतिबिंब, चिदाभास को होती है। और यदि तुम हम यदि खाली मेरा स्वरूप ही चिदाभास है, इससे अलावा मेरा स्वरूप नहीं है मानते हो, तो फिर वो कर्म से बंधायमान हो जाओ, लिपायमान हो जाओगे। अन्यथा इन कर्मों से यदि मुक्त होना चाहते हो, इन कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो कर्म रोकने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करते रहने दो, जो करने वाले हैं वो कर्म करेंगे, करते रहने दो। पश्यन सिन्वन स्पृशन जिग्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृणन उन्मिशन निमिशन नपि इंद्रिया निंद्रियाधिषु वर्तन्ते इति धारय ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिमा। प्रक्रिया बिल्कुल परफेक्ट है गीता में, प्रक्रिया में फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। कर्म से आप मुक्त होने का जो प्रक्रिया गीता में भगवान ने दी है वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। गलत हम हैं क्योंकि हम उस प्रक्रिया को अपना नहीं सकते। 18वें अध्याय में भी भगवान ने कह दिया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम पंचैतानिमानी कारणानि निबोधमे सांख्य कृतांते प्रोक्तानि न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवा। चाहे शास्त्र सम्मत कर्म हो चाहे शास्त्र निषिद्ध कर्म हो, सारे के सारे कर्म करने वाले यही पांच हेतु हैं और इन पांच में तुम्हारा नाम तुम्हारा उपस्थिति कहीं भी नहीं है, इन पांच में से तुम एक भी नहीं हो। पहला कर्मकर्ता शरीर, दूसरा कर्मकर्ता चिदाभास, तीसरा कर्मकर्ता करण इंद्रियां अंतकरण, चौथा कर्मकर्ता पंच प्राण, पांचवा कर्मकर्ता आदिदैव। तुम अपने को क्या मानते हो? शरीर मानते हो कि शरीर से भिन्न मानते हो? तुम अपने को क्या मानते हो? इंद्रियां मानते हो कि इंद्रिय से भिन्न मानते हो? तुम अपने को प्राण मानते हो कि प्राण से भिन्न मानते हो? तुम अपने को चिदाभास मानते हो कि चिदाभास से भिन्न मानते हो? तुम अपने को अधिदैव मानते हो कि अधिदैव से भिन्न मानते हो? यदि तुम इन्हीं पांच में से एक मानते हो तो तुम्हारे मथे में इनके द्वारा किया हुआ कर्म आएगा, यही तुम्हारा कर्म बंधन है। यदि तुम इन पांच से अलग मानते हो तो फिर इनका किया हुआ कर्म से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही कर्म बंध विनिर्मुक्त का ये अवस्था है ये, क्योंकि वेदांत और शास्त्र महापुरुष बार बार कहते हैं तुम बिंब हो प्रतिबिंब नहीं हो। कर्म करने में हेतु प्रतिबिंब है, कर्म करने में हेतु बिंब नहीं है। तुम बिंब हो चिदाभास प्रतिबिंब है। अब दर्पण के अंदर के दिखने वाले दृश्य को कोई भी मूर्ख भी नहीं कहेगा कि मैं दर्पण के अंदर हूं, ये कोई भी नहीं कहता है। कहता है हा? दर्पण के अंदर दिखने वाले शरीर को कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं दर्पण के अंदर हूं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। दर्पण के अंदर दिखता हुआ भी वो अपने आप को निश्चय कर रहा है कि मैं दर्पण के बाहर खड़ा हूं। इसी तरह अंतकरण में चिदाभास के रूप में देखते हुए भी आपको इतने करना निश्चय है कि मेरा असली स्वरूप तो अंतकरण से भिन्न है। इतना ही निश्चय आपका हो जाना है कि असंगता आ जाएगी। और ये अंतकरण संयुक्त जो चिदाभास आदि से इस पांच संघात से सम्मिलित रूप से जो भी कर्म होते, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो चाहे न्याय हो न्याययुक्त हो चाहे अन्याययुक्त हो, उससे फिर तुमको कुछ लेना देना नहीं है। यही करें यही भरें, मुझे क्या लेना देना है? यही कर्म बंधन से विनिर्मुक्त होने की दृष्टि। यथा जगत प्रवृत्तीनाम आदिकारणमं सुमान पुमांस्तथैव देहादि प्रवृत्तो कारणम परम। इसी प्रकार के देह आदि, आदि शब्द से प्राण इंद्रियां अंतकरण, इन सब में चेष्टा होने में कारण उस परमात्मा का अनुप्रवेश हेतु है। मम देहो अयम इत्येवं स्त्रीवालांधकास भवमत मन्वते। अरे चार्वाकियो, हमारे वैदिक सनातन धर्म की तो स्त्रियां भी मैं देह हूं नहीं कहती है, मेरा शरीर ये कहती है, और तुम उतनी भी नहीं हो, उससे भी बढ़कर मूर्ख हो गए हो। हमारे वैदिक सनातन धर्म के तो बच्चे भी मेरा शरीर कहते हैं, मैं एक शरीर नहीं कहता है, बच्चा भी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर ये कहता है। वैदिक सनातन धर्म के लोग तो अंधा व्यक्ति भी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर ये कहता है। मम देहो अयम इति एवं स्त्री बाला अंधकाश्च मन्यते। सभी लोग यही मानते हैं कि मेरा शरीर, हाँ तो मैं शरीर नहीं मानती। फिर तुम ही ये गलती क्यों करते फिर रहे हो कि शरीर ही आत्मा है। देहो अम इति ना वेति कदाचित अपि कश्चन। ये सारे के सारे मतभेद उपस्थित हैं। इंद्रियाण्यपि नात्मानः। अब तो शरीर आत्मा नहीं है, ये युक्ति से समझा दिया। अब कोई माने कि इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हो तो उसका भी खंडन कर रहे हैं। इंद्रियाणि नात्मानः, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती है। करणत्वाद प्रदीपवत्, ये इंद्रियां तो साधन हैं, करण हैं, प्रदीपवत दिए की तरह। जैसे अंधकार कमरे में पदार्थ को देखना हो तो दिए को जलाना पड़ता है, और दिए को जलाने के माध्यम बाद दिए के प्रकाश के माध्यम से कमरे के पदार्थों का हमें ज्ञात होता है। जैसे दिया, कोई भी अज्ञानी भी नहीं कहेगा कि ये दिया मैं हूं, कहेगा हा? दीपो हम कहेगा कोई, दिया जो जलता हुआ दिया है वही मैं हूं, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। जैसे दिया करण है वस्तु प्रकाशन का, इसी तरह ये इंद्रियां भी दीपक की तरह वस्तु प्रकाशन के साधन हैं, करण हैं। माला को प्रकाशित करना हो तो आंख चाहिए हाँ। नमक और चीनी को प्रकाशित करना हो तो जिह्वा चाहिए हाँ। इसी प्रकार के शब्द, स्तुति और निंदा का शब्द को प्रकाशित करना हो तो कान चाहिए। इसी प्रकार के सुगंध और दुर्गंध को प्रकाशित करना, कमरे में सुगंध है कि दुर्गंध है ये जानने के लिए दिया जलाने से पता चलेगा कि नहीं है? नहीं चलेगा। फिर क्या जलाना चाहिए? नाक जलाना चाहिए है? कमरे में सुगंध है कि दुर्गंध है? देखो कल सुबह आते ही कितना दुर्गंध था है? फिर तुरंत खिड़की खोलनी पड़ी, स्प्रे करना पड़ा, तो बत्ती तो जल रहे थे ना, तो बत्ती जलने से पता नहीं चलेगा है? तो नाक जलना चाहिए। जैसे सुगंध दुर्गंध के लिए, जैसे लाल पीले के लिए बत्ती है, कोई भी बत्ती मैं नहीं कहता है, इसी तरह सुगंधी दुर्गंधी को जानने के लिए नाक है, तो फिर नाक को मैं क्यों कहते हो? नाक को मैं कहते हो तो बत्ती को भी मैं कहो है? इंद्रियों को मैं कहते हो तो बत्ती को भी मैं कहो ना। ये तो केवल करण है, पदार्थों को जानने के साधन है, सामग्री है। इंद्रियाणि इंद्रियाण्यपि नात्मानः करणत्वात् प्रदीपवत् वीणावादनवत् श्रोत्रम् शब्दग्रहण साधनम् चक्षुस्तेजस्त्रितया रूपग्रहण साधनम्। चक्षु रूप ग्रहण के साधन हैं, जैसे लोक व्यवहार में वस्तु को प्रकाशित करने के साधन सूर्य का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बिजली का प्रकाश आदि हैं। इसी तरह वो प्रकाश को, चंद्रमा को कोई मैं नहीं कहता, दीपक को कोई मैं नहीं कहता, चंद्रमा को सूर्य को कोई मैं नहीं कहता, टॉर्च को मैं नहीं कहता, तो फिर आंख को मैं क्यों कह रहे हो? ये भी टॉर्च की तरह यंत्र हैं, साधन हैं रूप प्रकाशन के। गंधस्य ग्राहकम घ्राणम पुष्प संपुट का अधिक बद, गंध ग्रहण का साधन नाक है। रसस्य ग्राहिका जिह्वा दधी चौद्रग्रता दिवत, ये दही है, ये दूध है, ये घी है, ये मधु है, ये मीठा है, ये नमक है, इसको जानने का साधन क्या है? रसन इंद्रिया। जैसे लाल पीला हरा नीला जानने के साधन क्या है? दीपक। दीपक को मैं नहीं कहते। इसी प्रकार से मधुर तीक्त कटु अम्ला आदि को जानने का साधन रसन इंद्रिया। दीपक से ये खट्टा है कि मीठा है ये पता नहीं चलेगा। दीपक से सूर्य के रोशनी से खट्टा है कि मीठा है ये पता नहीं चलेगा। यदि सूर्य के रोशनी से खट्टा है कि मीठा है पता चलता तो आम खरीदने वाले कभी धोखे में न पड़ते, देखकर लाए हैं। और घर में जब कहते हैं मालिक के, अरे खट्टा आम लेके आए, देख के नहीं लाया? बोले देख के लाया। नौकर कहता मैं देख के लाया, उसने कहा देख के नहीं लाया। मालिक भी मूर्ख और नौकर भी मूर्ख है। चख के नहीं लाया कहता तो तब तो ठीक था, है ये खट्टा आम है थोड़ा चख के नहीं लाया कहता तो ठीक था। मालिक क्या कह रहा है? देख के नहीं लाया। और नौकर क्या कह रहा है? देख कर ही लाया, फिर भी खट्टा कैसे निकला? क्योंकि जिस प्रकाश से तुम आम को देख रहे हो, आम के कलर को तो वह देख सकता है, रस को थोड़ी देख सकता है ये प्रकाश। रस को देखने के लिए तो रसन इंद्रिय चाहिए। मालिक को कहना चाहिए था चख के नहीं लाया। और यदि नौकर कहता कि हम मैंने चख के लाया तो तेरा जूठा खाएंगे हम, वहां भी समस्या है। और चख के नहीं लाया तो फिर अपूरा अधूरा काम किया उसने, बड़ी समस्या है संसार। रसस्य ग्राहिका जुह्वा दधिक्षोद्र घृता दिवत, इंद्रियाणि नमे संति मूकोस्मी बधिरोस्मी हम। कोई बहरा कान न सुनने वाला व्यक्ति हो, वह यही कहता है कि मेरे कान नहीं है, यही न कहता है मैं नहीं हूं, ये तो नहीं कहता है। कहता है बधिर व्यक्ति, बिल्कुल कान न सुनने वाला व्यक्ति के सामने तुम कुछ बोलो, उसके कान तो नहीं है लेकिन शब्द हैं, तो वो क्या कहता है? हैं? मैं नहीं हूं ऐसा कहता है, कान नहीं है नहीं ना कहता है। और जिसकी वाणी नहीं है, मुंह कहे मैं नहीं हूं तो फिर भी नहीं कहेगा वो, मुख नहीं है वाणी नहीं है कहेगा वो। कोई गुंगा व्यक्ति को तो क्यों नहीं बोलता है पूछो, कारण बताएगा कि नहीं? गुंगा व्यक्ति को तुम पूछो, कान तो सुनता है लेकिन शब्द नहीं बोल सकता, उस गुंगे से पूछो तू क्यों नहीं बोलता है, तो क्या जवाब देगा बोलो? है वाणी नहीं है बोलकर जवाब देगा वो, तो इशारा करेगा कि मुख नहीं है, या फिर लिख के कहेगा कि वाणी नहीं है, है ना? वाणी नहीं है मेरे, मैं नहीं हूं तो ये तो नहीं कहता है ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? इंद्रिय अलग है, मैं अलग है, आत्मा अलग है। इत्याहोर इंद्रिये रहीना जना किम ते निरात्मका, कि हाथ कटा हुआ व्यक्ति निरात्मक है, वो आत्मरहित है। कि पांव कटा हुआ व्यक्ति निरात्मक है, आत्मरहित है। आंखा नहीं है जो अंधा है, क्या वो निरात्मक है? कान नहीं है बहरा है तो निरात्मक है? वाणी नहीं है गूंगा है तो क्या वो निरात्मा है? ये इंद्रियां तो करण है, करण नहीं है लेकिन आत्मा नहीं है तो नहीं कर सकते हो ना, इनसे अलग आत्मा है, ये सिद्ध करना है बस। प्राणोप्यात्म न भवती ज्ञाना भावा सुसुप्तिसु, बोले ठीक है, आज शरीर भी आत्मा नहीं है, इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, प्राण तो आत्मा है ना, प्राण को तो आत्मा मानना चाहिए। बोले प्राण भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञानाभाव। आत्मा में तो ज्ञान रहता है, आत्मा ज्ञान का पर्यायवाची है, ज्ञान आत्मा का पर्यायवाची है। ज्ञान स्व है वही आत्मा है, आत्मा स्व है वही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा दोनों ही एक ही व्यक्ति का एक ही वस्तु का नाम है, पर्यायवाची मात्र है। ज्ञान कहो और आत्मा ज्ञान है, आत्मा नहीं है कहना मूर्खता है। हाँ, प्राण में ज्ञान नहीं है। प्राण में ज्ञान न होने से क्या सिद्ध हुआ? प्राण आत्मा नहीं है बस। यदि प्राण में ज्ञान होता तो सुषुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा की अवस्था में सारे के सारे प्राण चेष्टा करता हुआ भी बाहर के वातावरण से वह अनभिज्ञ रहता है। गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति के सामने कोई आए कमरे से तो वह पहचानेगा कि नहीं? प्राण तो काम कर रहा है, नाक मुख से जाना आना कर रहा है, वो तो पहचानेगा कि नहीं? नाक जिस समय, प्राण नाक से जिस समय बाहर गया है उस समय तो आपको देख लेगा वो, तो फिर अंदर जाएगा। आपके चले जाने के बाद गहरी निद्रा से सोकर उठा हुआ व्यक्ति को ये भान होना चाहिए ना कि मैं सोया था उस समय तुम आकर चले गए, होता है भान? नहीं होता। क्यों? ज्ञानाभाव। एक महात्मा थे, बैठते हैं, उनके पास बड़ा बढ़िया कंबल था, कहीं यात्रा में गए, भक्तों ने भिक्षा दिया, बढ़िया हाँ आम रस खिला दिया, पूरी और आम रस तो खाए, तो उनको दिन में मध्यान्ह थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, पेड़ के नीचे सो गए एकांत में, तो कंबल बगल में रखा था, ठंडी का मौसम था, ओढ़ के सोए। हाँ, तो एक कोई उचक्का आ गया, उसने देखा बहुत बढ़िया कंबल ओढ़कर सो रहा है ये। हे महात्मा, कौन सो रहा है? कुछ नहीं बोला। अरे कौन सो रहा है? कुछ नहीं बोला। दो तीन बार आवाज लगाया, कुछ नहीं बोला। तो उस उचक्के को पता चला कि ये तो गहरी निद्रा में सोया है। तो इस कम्बल को खींचा तो पूरा का पूरा कम्बल आ गया, खींचा तो ऊपर से उड़ा था, और उस महात्मा को पता ही नहीं चला कम्बल चला गया, और चोर लेके चला गया कम्बल। थोड़ी देर के बाद महात्मा जब उठे, कम्बल तो है ही नहीं भाई, ये कहां गया? मैं ओढ़ के सोया था, कहां चला गया? यदि गिरा होता तो बगल में होना, तो बगल में भी नहीं, और आपने आप कमल जा नहीं सकता क्योंकि जड़ है, इतना तो आप भी जानते हो ना, है? अपने आप कमल भाग के जा तो नहीं सकता नहीं क्योंकि जड़ है, इतना तो आप भी जानते हो। फिर भी ये कमल कौन ले गया, कहां चला गया, कौन आया था? विचार करने लगे, मैं तो सो गया था लेकिन मेरा प्राण तो सोया नहीं था, प्राण को तो पता होना चाहिए था कौन आया, कौन खींच के ले जा रहा है, हैं? प्राण को तो पता होना चाहिए था, क्यों नहीं पता चला? इसका मतलब है कि प्राण जड़ है। महात्मा को निश्चय हुआ कि प्राण को कुछ पता नहीं चलता है। आप लोगों को निश्चय हुआ है कि नहीं? अभी तक प्राण जड़ है, प्राण को कुछ पता नहीं चलता है, यह अभी तक पक्का निश्चय हुआ कि नहीं? है? महात्मा को पहली बार निश्चय हुआ कि प्राण जड़ है, यदि जड़ न होता तो उसको पता चलता कि कम्बल कौन आया, कौन ले गया, किधर किस दिशा में गया, प्राण को कुछ भी पता नहीं, जगता हुआ भी। इसका मतलब प्राण जड़ है। तो महात्मा बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। तो दूसरा व्यक्ति आया तो महात्मा बड़े प्रसन्न, उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा आज तुम बड़े प्रसन्न हो, कारण क्या है? बड़े पूछो नहीं, मुझे आज एक ग्रंथि, एक रहस्य खुल गया, एक भ्रांति मेरी टूट गई, एक भ्रम मेरा टूट गया। जगत में कितने भ्रम हैं, कितने भ्रम हैं, सभी भ्रम मिलजुल कर मुझे फंसा रहे हैं, उनमें से एक भ्रम आज मेरा टूट गया। कैसे टूटा? मेरा कमल चोरी हो गया, चोरी हो गया तो रोना चाहिए था, तुम हंस रहे हो। बोले उसका कारण तो समझ लो, मैं सो रहा था गहरी निद्रा में, मेरे प्राण जग रहे थे, फिर भी कम्बल कौन ले गया, किधर ले गया, उसको कुछ पता नहीं चला। इससे मुझे पक्का निश्चय हो गया प्राण आत्मा नहीं है, जड़ है, यह निश्चय होना ही मेरी प्रसन्नता का कारण है। कम्बल तो आता है जाता है, यह निश्चय हो जाना। हाँ, देखो इस शरीर आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, अंतःकरण आत्मा नहीं है, इन सबका संघात भी आत्मा नहीं है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास भी आत्मा नहीं है, ये समझ में आ जाना कम उपलब्धि है, है? कम उपलब्धि है, बोलो, यही तो जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो महात्मा तो ऐसी उपलब्धि होने पर ही प्रसन्नता व्यक्त करता है, और आप लोग तो इनको महत्व देते नहीं हो, करोड़ दो करोड़ लाभ हो गया तो उसी को महत्व दे, बड़े प्रसन्नता हो जाते हो, और क्या, महात्मा की तरफ जीना सीखो भाई। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।